الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते हैं, मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 5 से, और आयात नंबर 21, 22 और 23 की तफसीर हमने पढ़नी है। तर्जुमा पढ़ लिया था खुलासे तफसीर के, बल्कि हम अभी दरमियान में ही थे, तो वहीं से हम शुरू करते हैं जहां पे आखिरी क्लास में पिछले हफ्ते छोड़ा था। तो हजरत मुफ्ती शफी, बल्कि ये तो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयान कुरान से होता है खुलासे तफसीर। तो पोस्टर और रियल टाइम में फर्क है, हैं हिदायत साहब? अच्छा, ध्यान दें। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ, वो पोस्टर जो है वो पिछले टाइम पे था, वो हर वक्त एक पोस्टर चेंज करना, चले कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। जो ग्रुप में है तो फिर उसको तो रियल टाइम मिल जाता है ना। तो आयत ये चल रही थी कि अल्लाह ताला, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सर अन्नासि ला यालमून, और इसके ऊपर काफी सैर हासिल बहस हो चुकी थी। ठीक है, तो अब आगे फरमाते हैं कि हक ताला ने फरमाया कि ये हालत चंद रोजा बतौर जरिया के है, यानी एक ट्रांजिशनरी पीरियड है। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ये मुश्किल वक्त आया हुआ है, ये चंद दिन का है। ये ट्रांजिशन जो होती है, या ट्रांजिट, स्टॉप ओवर होता है ना, ट्रांजिट, जब आप कभी फ्लाइट में जा रहे होते हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, तो डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो अक्सर नहीं होती है, तो बीच में आपको एक ट्रांजिट लोकेशन पे रुकना पड़ता है। वो जो एक ठहराव होता है ना, वो अक्सर जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, खुसूसन अगर आप अमेरिका शमरीका जा रहे हो और आपके पास पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट हो, तो फिर जो ट्रांजिट स्टॉप ओवर होता है ना, वहां पे फिर से आपकी इमिग्रेशन, फिर से आपकी जो है वो चेकिंग, और खूब जबरदस्त किस्म की स्कैनिंग, और हत्ता के कभी जो है वो पूछगछ वगैरह भी होती है। ठीक है, तो वो ना आपकी मंजिल होती है, ना वो आपका घर होता है, बल्कि आप बीच में मुअल्लक होते हैं, लटके हुए होते हैं। तो इस वजह से वो सिचुएशन जो होती है वो हमेशा ही मुश्किल होती है, चाहे वो एक एयरलाइन फ्लाइट की ट्रांजिट लोकेशन हो, चाहे वो जिंदगी के अंदर कोई ट्रांजिट मकाम हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी यही मामला था इस वक्त। तो असल मकसद, यानी असल मंजिल क्या थी, उनको ऊंचा मुकाम अता फरमाना है, और उसका जरिया अजीज मिस्र को और उसके घर में परवरिश पाने को बनाया गया। ठीक है, बतौर गुलाम के ही वो वहां पर रह रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा जरा ज्यादा अच्छे यानी प्रोटोकॉल के साथ उनको, ये गुलाम भी बड़ा गुलामी भी बड़े अच्छी से गुलामी थी, तो घर में परवरिश पाने को बनाया गया, क्योंकि उमरा के घर में परवरिश पाने से सलीका व तजुर्बा बढ़ता है, उमूर सल्तनत का इल्म होता है। ठीक है, तो आप जिस जिन लोगों के सोहबत के अंदर रहते हैं, तो जाहिर है बहुत सारी चीजें आपके ऊपर रब ऑफ होती हैं, आपको जो है वो नजर आती हैं चीजें, तो सलीका भी बढ़ता है, तजुर्बा भी बढ़ता है, ताल्लुकात भी पैदा होते हैं, यू गेट टू नो मोर पीपल इन द गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। तो ये जो है वो कुछ फवायद ऐसे घरों के अंदर रहने से मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा गुर्बत में अमूमी तौर पर अगर गुर्बत में रहा जाता है ना, तो फिर वहां पर अच्छे मैनर्स वगैरह नहीं बनते हैं, सलीका, शऊर, और जो एक थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा यानी मकरो फरेब नहीं होना चाहिए। सोफिस्टिकेशन का मतलब मकरो फरेब वाली पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि एक जरा साफ सुथराई और एक यू नो सलीका सलीका मंदी जिसको कहते हैं, तो वो फिर ना एक नॉर्मली एक मिडिल क्लास के अंदर के जो घराने होते हैं उनके अंदर इस किस्म की सलीका और शराफत होती है, लेकिन बहुत गरीब गुरबा में फिर जो है ना वो बहुत क्रूड किस्म के मैनर्स वगैरह, जिसको जिसको स्ट्रीट मैनर्स कह देते हैं, स्ट्रीट मैनर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो उमरा के घर की बात हो रही है, और वहां पर जो है वो जरा यानी अच्छे तौर तरीके होते हैं, ठीक है। जाहिर है वो मैनरिज्म्स का ख्याल रखा जाता है कि भाई दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखना है, आपने आवाम के सामने हाजिरी देनी है, तो लोग आपको आपके ऊपर अपनी नजरें गाड़े हुए होते हैं, तो बड़ा आपको ख्याल रखना पड़ता है इन चीजों का, ठीक है। ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है अगर जो है वो अच्छी नीयत से की जाए, और जो है वो किसी गैर कल्चर से मरऊब होकर के ना की जाए। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वो एक मुख्तलिफ दौर है। हमारे यहाँ जो उमरा का तबका होता है ना, ये जो उमरा का तबका है हमारे यहाँ बरेसगीर पाक व हिंद में, बल्कि ओवरऑल पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर, हम जो है वो यूरोप की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं, यूरोप की गुलामी में। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो मैनर्स होते हैं ना, वो भी वही होते हैं, चमचे कांटे से खाना, ठीक है ना, और कैसे जो है वो सूट बूट पहनना है, और जो है वो कैसे जो है वो अंग्रेजी बोलनी है, ये हमारे यहाँ के अच्छे मैनर्स बन गए हैं। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ना वो गैर कौम की मरूबियत की वजह से ये मैनर्स आए, ठीक है। लेकिन ये फिनोमेना जो है ये पिछले 150-200 साल से है, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। मुसलमान जो कौम होती थी वो उससे पहले कलोनियल पावर्स की गुलाम नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो उस वक्त फिर उमरा के अंदर जो मैनर्स होते थे वो इस्लामी मैनर्स ही हुआ करते थे, और यानी सलीके शऊर वाले मैनर्स ही हुआ करते थे। अब तो बहुत ही मामला बिगड़ा हुआ है ना, खराब हुआ हुआ है। मैनर्स का मतलब है अंग्रेजी बोलना, और जो है वो चमचे काटे से खाना वगैरह, इस किस्म की चीजें, ठीक है। तो इस पर ऐसे कहना का मकसद ये है के सलीका और तजुर्बा बढ़ता है, ताल्लुकात अच्छे बनते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, अनलेस आप किसी के गुलाम हो जाएं, यानी जहनी तौर पर आप गुलाम हो जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जहनी तौर पर गुलाम नहीं थे, वो जिस्मानी तौर पर गुलाम थे, और हम इस वक्त 1947 से आज तक हम क्या हैं, हम जिस्मानी तौर पर गुलाम नहीं हैं, हम जहनी तौर पर गुलाम हैं, और जिसका असर जो है पर हमारे जिस्म के ऊपर भी पड़ रहा होता है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इसी का बकिया आगे ये है, और जब वो अपनी जवानी यानी सन्ने बुलूग या कमाल शबाब को पहुंचे, हमने उनको हिकमत और इल्म अता किया, ठीक है। वलम्मा बलगा अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मं व इल्मा वकदालिक नजजिल मुहसिनीन, ठीक है। मुराद इससे उलूम नबूवत का अता करना है, और कुएं में डालने के वक्त जो उनकी तरफ वही भेजने का जिक्र पहले आ चुका है, वो वही नबूवत नहीं थी। यानी अब जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र को पहुंच गए, और 40 साल में जो है वो तमाम अंबिया को नबूवत मिली सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, वो वाज एन एक्सेप्शन, ठीक है। वो बहुत सारी चीजों में ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक्सेप्शन थे, खसूसा माशाल्लाह अल्लाह हमारे मशायख को जजाए खैर दे, इस इज्तिमा में जो पिछले दिनों छुट्टी भी हुई है उस इज्तिमा की वजह से, तो उसमें जो शेख उल हदीस साहब ने अपने बयान में क्या जबरदस्त बात फरमाई कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ना वो वाहिद इंसान थे कि जिनकी रूह पहले माँ के पेट में पड़ी है और जिस्म बाद में बना है, वरना रिवर्स होता है, हर एक का मामला रिवर्स होता है, उल्टा होता है कि पहले जिस्म बनना शुरू होता है फिर 120 दिन के बाद रूह फूंकी जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम का मामला ऐसा नहीं था। मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम हैं उनकी जो वालदा थी, वो रही सलाम, वो नहाने के लिए गई थी, है ना, उस तरफ गर्ब की तरफ, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए थे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके बतन के अंदर जो है वो रूह फूंक दी थी, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की क्रिएशन शुरू हुई थी। तो उनका उनकी नबूवत भी जो है फिर अर्ली एज के अंदर मिल गई थी, बाकी किसी को नहीं मिली। 40 साल में हमारे अपने महबूब अलैहिस्सलाम को भी 40 साल में मिली, और बाकी सबको भी। तो ये जो हुक्मों व इल्मा है, तो इससे मुराद जो है वो उलूम नबूवत का मिलना है। तो पीछे जो फिर वही का जिक्र था वो पहले बात हो चुकी है कि वो वही जो थी ना वो इल्हाम के मानी में थी, ठीक है, जो कि किसी किसी गैर नबी के ऊपर भी आ सकता है, किसी वली के ऊपर भी आ सकता है, हत्ता के किसी काफिर मुशरिक के ऊपर भी इल्हाम आ सकता है, हत्ता के किसी जानवर के ऊपर, हत्ता के मक्खी के ऊपर भी इल्हाम आता है, जैसे कि कुरान मजीद से साबित भी है। औहैना है ना, औहैना का लफ्ज जो है वो औरत के लिए भी इस्तेमाल हुआ, और औहैना का लफ्ज जो है वो इसके लिए भी, शहद की मक्खी के लिए भी इस्तेमाल किया। तो फरमाते हैं कि वो वही नबूवत नहीं थी बल्कि ऐसी वही थी जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को दी वही भेजी गई थी, और हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। जो किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाने का आगे बयान होगा, इससे पहले इन जुमलों में बतला दिया गया है कि वो सरासर तोहमत और झूठ होगा। ठीक है, यानी ये जो नेक लोगों का बदला, उसके बारे में हमने काफी तफसील से पिछली क्लास में बात कर ली थी कि ऐसा जो बदला मिलता है ना दुनिया में भी इज्जत वाला मामला, तो ये तो फिर मोहसिनीन के साथ होता है। मोहसिनीन कौन होते हैं? जो कि एहसान करते हैं, और एहसान का मतलब क्या? ब्यूटीफाई करना, ठीक है ना, ब्यूटीफाई करना। किसको ब्यूटीफाई करना? अपने चेहरे को ब्यूटीफाई करना है, मेकअप लगा करके और लिपस्टिक लगा करके, है ना, या शेव करके ब्यूटीफाई करना अपने चेहरे को, नहीं, बल्कि सबसे पहले अपनी सोच को ब्यूटीफाई करना, अपनी फिक्र को ब्यूटीफाई करना, अपनी नीयत को ब्यूटीफाई करना, और उसके बाद फिर अपने जाहिरी आमाल को ब्यूटीफाई करना। ठीक है, इसको कहते हैं एहसान करना, और एहसान करने वाले को क्या कहते हैं? मुहसिन। और अल्लाह ताला किसको जजा देते हैं? मुहसिनीन को जजा देते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला से कम अज कम हमें दुआ तो मांगनी चाहिए ना कि अल्लाह हमें भी एहसान करने वालों में शामिल फरमा लीजिए, ठीक है। और अल्लाह ताला का वादा पक्का है, अल्लाह ताला अपने वादे से खिलाफ वर्जी नहीं करते। हम, हमारा काम है मोहसिन बनना, फिर अल्लाह ताला अपने वादे को पूरा फरमाएंगे। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि जी तो ये जो मोहसिनीन को अजर देने का अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम मोहसिनीन में से थे, तो फिर वो तोहमत वोहमत जो लगेगी तो वो मोहसिनीन तो फिर तोहमत, यानी जो सही मानों में काबिले तोहमत इंसान होता है वो तो मोहसिनीन में से नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी तोहमत सरासर गलत और झूठ थी, उनके ऊपर जो तोहमत लगाई गई थी, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला की तरफ से इल्म और हिकमत अता हो उससे ऐसे काम सादिर हो ही नहीं सकते। आगे इस तोहमत के किस्से का बयान है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के घर में आराम व राहत के साथ रहने लगे, और उसी दरमियान में ये इब्तिला पेश आया कि इब्तिला यानी आजमाइश, उनको मुबतला किया गया एक आजमाइश के अंदर, एक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या थी वो इब्तिला? कि जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे वो उन पर मफ्तून हो गई। मफ्तून का मतलब फितने में मुबतला हो गई, ठीक है, वो फितने की इसे मफूल बन गई, यानी फितने में मुबतला हो गई, ठीक है। तो शैतान ने उसको वरगलाया और उसने वो जो है वो शहवत का रास्ता इख्तियार किया, तो उनसे अपना मतलब हासिल करने के लिए उनको फुसलाने लगी और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, और उनसे कहने लगी कि आ जाओ हई तलक, ठीक है, तुम ही से कहती हूँ, जल्दी से आ जाओ, हईता और लका यानी तुमसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अव्वल तो ये खुद बड़ा भारी गुनाह है, यानी गैर महरम औरत के साथ जो है वो इख्तलात करना और जो है वो जिना का मामला, ये तो खुद एक भारी गुनाह है, अल्लाह ताला बचाए, ठीक है, माज अल्लाह। दूसरे वो यानी तीसरा शौहर, यानी तेरा शौहर मेरा मुरब्बी और मोहसिन है, कि मुझको कैसी अच्छी तरह से उसने रखा है, तो क्या मैं उसके नामूस में खलल अंदाजी करूं? ठीक है, तो एक होता है नफसे गुना, ठीक है, यानी गुना जो है वो इन ऑफ इट सेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है, लेकिन गुनाह की इंटेंसिटी के अंदर इजाफा भी हो जाता है, ठीक है। इजाफा कैसे हो जाता है? कि उसमें अगर दूसरे गुनाह भी शामिल हो जाए, ठीक है, और यहां पर जिना के ऊपर नाशुक्री का और एहसान फरामोशी का गुना भी इसके अंदर ऐड हो रहा था, इंसान की एहसान फरामोशी। वैसे तो अगर कोई शख्स जिना में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला की एहसान फरामोशी तो फिर भी हो रही होती है, क्योंकि हर गुना ही असल में अल्लाह की एहसान फरामोशी है, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री। अल्लाह ताला ने हमें जो जो सलाहियतें दी हैं, जो हमें आजाद दिए हैं, तो भाई वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अदा इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ना। तो अगर हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अपने किसी भी उज्व को इस्तेमाल करते हैं तो वो उस उज्व की नेमत की नाशुक्री होती है। तो यहां पर एक इंसान की भी नाशुक्री हो रही थी, अल्लाह की तो नाशुक्री होती ही होती है हर गुनाह के अंदर, लेकिन एक इंसान की भी जो कि उसके घर का रब्बुल बैत था, अजीज मिस्र, ठीक है। तो इससे जो है ना वो गुनाह फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुनाहों की जो 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 इंटेंसिटी है ना, ये वेरी करती है, ये फ्लक्चुएट करती है, ठीक है ना। तो गुनाह जो है वो बढ़ भी जाती है उसकी इंटेंसिटी, और कभी ऐसा भी होता है कि गुनाह की इंटेंसिटी कम भी हो जाती है, गुनाह की इंटेंसिटी कम भी हो जाती है। चले बोल बहुत रिया, आपसे भी कोई सवाल करना चाहिए कि गुनाह की इंटेंसिटी कम होने की कौन सी सूरत हो सकती है, ठीक है, कि जबकि गुनाह की इंटेंसिटी या गुनाह की शिद्दत वो कम हो जाए, ये कब हो सकता है। जी, इंटेंसिटी बढ़ने का तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मल्टीपल गुनाह जो है वो एक फेल के अंदर ऐड हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर जिना के साथ साथ एक इंसान की नाशुक्री भी ऐड हो गई, ठीक है। तो इंटेंसिटी कम होने की कोई सूरत समझ में आती है? वो कैसे? जब नियत बुरी ना हो। अच्छा हाँ, नियत बुरी ना हो, सही है, अच्छा जवाब है ये, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि इल्म और इरादे से जब वो गुनाह ना हो, ठीक है ना, यानी आप बड़ा इंटेंडेड जो है ना वो पहले से प्लान करके जा रहे थे और जाके गुनाह किया, तो उसकी एक अलग शिद्दत होगी, लेकिन अनइंटेंशनली हो गया वो गुनाह, ठीक है ना, बगैर इल्म और इरादे के, तो बड़ा अच्छा जवाब है आपका। मजबूरी की सिचुएशन जिसके अंदर के यानी आप फंस गए थे, स्टक हो गए थे और आप निकल नहीं पा रहे थे, तो ये भी एक गुनाह की इंटेंसिटी कम होने की सूरत हो सकती है। नदामत से कि गुनाह कर भी रहे थे और साथ साथ नदामत भी हो रही थी, लेकिन फिर भी कर लिया, ठीक है। तो हाँ, अगर कोई इस तरह से करता है कि नादिम होने के साथ साथ गुनाह भी कर रहा है, तो इसमें भी इंटेंसिटी कम होने की सिचुएशन हो सकती है। अनअवॉइडेबल सिचुएशन तो मजबूरी वाली सिचुएशन द सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि मजबूरी का लफ्ज इसका मतलब ही यही होता है कि जबर के साथ अंडर प्रेशर आपने कोई काम किया। गुनाह के बाद कोई नेकी कर लेना, वो तो तौबा कर ली और फिर उसके बाद नेकी कर ली, तो फिर तो गुनाह माफी हो जाते हैं ना हम तो यहाँ पे, ठीक है। हम तो गुनाह के बाद को नेकी कर लेना, ये इस वाले कॉन्टेक्स्ट में मेरे तो समझ में नहीं आता। अच्छा, एक और केस जिसके अंदर गुनाह की इंटेंसिटी कुछ कम हो सकती है, वो क्या, वो उसके लिए एक बड़ा टेक्निकल सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो उलमा अपने इस्तेमाल करते हैं कि उमूमे बलवा है, उमूमे बलवा उसको कहते हैं, बलवा मतलब फसाद, ठीक है ना, जैसे बलवाई कहते हैं ना फसाद फैलाने वालों को, फसाद करने वालों को। तो उमूमे बलवा जब हो जाए ना, जब हर तरफ जो है वो गुनाह जो है वो राइज हो जाए, तो उसके अंदर फिर उससे फिर बचना जो है ना वो एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उससे भी जो है ना वो उम्मीद की जा सकती है कि उसके ऊपर जो है वो सजा कम हो जाएगी, सजा कम हो जाएगी उमू में बलवा की वजह से, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर बदनजरी, ठीक है, अब जो है वो इस जिस दौर जिस जमाने में हम रहते हैं, तो यहां पर बदनजरी के मौके उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोस, है ना। तो यानी बिल बोर्ड हो या इंसान हो या जो या क्या क्या कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब तो हरमैन शरीफैन के अंदर, अब तो क्या, मतलब बहुत पुरानी बात हो चुकी है अब तो, ये हरमैन शरीफैन के अंदर यानी बदनजरी के मौके जो है वो अनगिनत हर तरफ, चेहरे का पर्दे को तो दीन से ही निकाल दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो अब जो है वो यानी तवाफ कर रहे हैं और खूबसूरत चेहरे भी देख रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो यानी क्योंकि ये उमू में बलवा है ना, अब पर्दा जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका हर जगह से, ठीक है। उसी तरह से तस्वीरों का शिकार हो जाना, ठीक है। तो एक तो होता है कि जी دین کی کام کے لیے تصویر کا استعمال کر رہے ہیں، علماء مشائخ کی جو ہے وہ مجالس کو براڈ کاسٹ کرنے کے لیے تصویر استعمال کر رہے ہیں وغیرہ، وہ تو چلو اس کے اندر فتویٰ پھر علماء کا ایک عمل ہے، لیکن تصویر کھینچنا انٹرٹینمنٹ کے لیے اور خالی میموری کے لیے ہے نا، بھائی یادگار ہو جائے بس، اب چلو جی فوٹو کھینچوانی ہے، سیلفی بنانی ہے، بنانا ہے وہ بنانا ہے نا، اب ہر طرف جو ہے وہ تصویر، اب ایک انسان جو تصویر سے بچنا چاہے وہ نہیں بچ سکتا تصویروں سے، کوئی کھینچ لے گا کوئی بتائے گا کوئی تھوڑی کہ اس نے آپ کی تصویر کھینچنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی عموم بلوا کی ایک صورت بنتی ہے، تو اس میں بھی پھر امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ بھائی میں تو نہیں اس میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس سچویشن کے اندر جو ہے وہ بچنا میرے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ بھائی یہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا، تو اس گناہ کی شدت جو ہے وہ تو اور بڑھ جائے گی، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی، بلکہ اکثر تو دنیا ہی میں ذلیل اور پریشان ہوتے ہیں، ورنہ آخرت میں تو عذاب یقینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک اور اصول بیان فرما دیا، انہو لا یفلح الظالمون، کہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں نا، یعنی احسان فراموشی والا ظلم، اس کانٹیکس کے اندر تو احسان فراموشی والے ظلم کی بات ہو رہی ہے، لیکن ظلم کا کانسیپٹ جو ہے وہ عموم ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے، گناہ کے لیے ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذنب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اثم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ظلم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا یونیورسل پرنسپل بیان فرما دیا، جیسے اوپر ایک پرنسپل بیان فرمایا تھا نا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ بھی ایک پرنسپل تھا، یہ قصے کہانی کا کوئی ایپیسوڈ کا کوئی ڈیٹیل نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہانی کو روک کر کے اصول بیان فرمایا، پھر اس کے بعد کہانی دوبارہ شروع کری، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور اصول کیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اب ہم ذرا اپنے حالات پہ نظر ڈالیں، بلکہ ہم اپنے انفسی سے لے کر کے جو آفاقی حالات ہیں، انفسی حالات کہتے ہیں کسی کی پرسنل، کسی کے پرسنل حالات، ذاتی حالات، اور آفاقی حالات اجتماعی حالات کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امت کے اجتماعی حالات، تو اس وقت جو ہے وہ اس اصول کی کیسے جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس اصول کی، انہو لا یفلح الظالمون، اس اصول کی خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے، کیسے کی جا رہی ہے، اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ بتا سکیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا مزاج بنا ہوا ہے ایک مسلمان کا، اس کی ذاتی زندگی کے اندر بھی اور اس کی اجتماعی زندگی میں بھی، یا مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی ہمارا اس وقت مزاج کیا بن گیا ہے، کیا وہ اس اصول کے مطابق ہے یا اس اصول کے خلاف ہے؟ گناہوں کا عام ہونا نہیں، کھلے عام اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں اور انفرادی زندگی میں بھی گناہوں سے مزین، بھائی میں آپ سے حالات حاضرہ نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ اس اصول سے کیسے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے، وہ میں پوچھ رہا ہوں، ہماری سوچ اس اصول سے کیسے کانٹراڈکٹ ہو رہی ہے؟ جی سوال کچھ اور ہے، آپ کے جواب کچھ اور تھا، اس وجہ سے پہلے سوال کو سمجھیں پھر اس کا جواب دیں، ہماری سوچ کیا بنی ہوئی ہے اس وقت، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، نہیں خصوصاً جب کافروں کے ساتھ لڑائی چڑھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ آجکل جیسا ہو رہا ہے، کھل کر کے جو ہے وہ یعنی کافر ملک کے ساتھ اور کافر قوم کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو کنفرنٹیشن ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کا سامنا ہو رہا ہے، وی لک فار فلاح ان دا ویز آف دا ظالمین، وکٹم مینٹالٹی، خوش فہمی کا شکار، ٹھیک ہے؟ آپ کے جوابوں میں سے سب سے کلوزسٹ جواب جو بنتا ہے نا وہ یہ والا ہے کہ وی آر لوکنگ فار فلاح ان دا ویز آف دا ظالمین، कॉलोनियल ब्रेन वॉश व्यू ऑफ एक्सपेक्टिंग द वेस्ट टू हेल्प अस। आपने तो माशाल्लाह हालात हाजरा नहीं, ठीक है ना। क्लोजेस्ट आंसर ये है, लेकिन ये भी बिल्कुल कंप्लीट आंसर नहीं है। हमने ये समझना शुरू कर दिया है कि हम अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करने के बावजूद दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारी सोच बन गई है इस वक्त। मुसलमानों की सोच इस वक्त ये बन गई है कि गुनाहों के बावजूद हम दुनिया में काफिरों के खिलाफ कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में हम जहन्नुम के फरिश्तों के खिलाफ कामयाब हो जाएंगे, यानी उनसे बच निकलेंगे, पतली गली से निकल के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नुम के जो दरोगा वगैरह है ना, जो पकड़ पकड़ करके इंसानों को जहन्नुम में डाल रहे होंगे या सजाएं दे रहे होंगे, ठीक है ना, चाहे रोजे यानी मैदान हशर के अंदर ही सजाएं मिल रही हों, ठीक है ना, तो हम किसी तरह उनको क्या कहते हैं कि डिच डिच कर देंगे हम किसी तरीके से काफिरों को, ठीक है ना, और अपने गुनाहों की सजा की हमें नहीं मिलेगी और बस हमारे साथ एक रेड कार्पेट वेलकम का मामला होगा और हमें जो है वो जन्नत में तालियां तालियों के शोर में दाखिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी गुनाहों से कुछ नहीं होता और वहां पर भी गुनाहों से कुछ नहीं होता। तो ये जो सोच हमारी बन गई है, ये कहां से आई है सोच? ये क्या कुरान से आई है? अल्लाह के कलाम से ये वाली सोच आई है? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के तालीमात से क्या ये सोच आई है, या ये सोच हमारी कहीं और से आई है? ये बन गई है हमारी सोच, या हमारे मास्टर्स ने हमारी ये सोच बना दी है, जो इस वक्त हमारे दुनियावी मास्टर्स बने हुए हैं तालीमी निजाम के जरिए से और अपने मीडिया के जरिए से, उन्होंने हमारी ये सोच बना दी है कि तुम्हें अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस तुम जो है ना वो सोशल मीडिया पे जाके जिहाद कर लो, है ना, और मैसेजेस को जो है वो आगे वायरल कर लो, और जो है इस तरह की तुम जो है वो उमरे करके आ जाओ, बहुत सारे उमरे कर लो, राइट, और इस किस्म की और नफली इबादतें तुम कर लो तो तुम कामयाब हो जाओगे, राइट, काफिरों के खिलाफ नारे मार दो, प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाओ, बड़ा सा जुलूस निकाल लो, चलो तुम और ज्यादा करते हो तो उनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट भी कर दो, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बायकॉट ना करें, उलमा ने उन्हें कॉल दिया तो करें भाई, जरूर से करें, बायकॉट की भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की तावील है बायकॉट करने की, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तो मैं आपको बायकॉट करने से मना नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है, जरूर से करें, लेकिन क्या बायकॉट करने से हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे जो हम मुस्तकिल कर रहे हैं बगैर नदामत के, बगैर एनी रिमोर्स के, जो हम अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं, तो हमें कामयाबी मिल जाएगी बायकॉट करने से? सोच हमारी कुछ ऐसी बन गई है, लेकिन ये अल्लाह के कलाम के खिलाफ है, ये उसूलों के खिलाफ है, ठीक है, गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, ठीक है, और गुनाहों को छोड़ने का इरादा तो करना ही पड़ेगा, उसी को तो तौबा कहते हैं, इरादा तो करना पड़ेगा ना, गुनाह को गुनाह मानना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते कि यानी मखलूत महफिलों के अंदर जो है वो यहूदियों को के खिलाफ नारे लगा रहे हों और अजीब व गरीब किस्म की उल्टी सीधी है म्यूजिक के साथ और औरतों के साथ और जो है वो न जाने किस किस तरीके से जो है वो काफिरों के खिलाफ नारे मार मार करके जो है ना वो समझेंगे कि बस जी अब तो हम दुनिया के अंदर जो है ना वो इस्लाम राइज हो जाएगा, इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा, और आ गया। अब तो आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब आ चुका है, आ चुका है कि नहीं आ चुका, क्या ख्याल है, इस्लाम गालिब आ गया कि नहीं आ गया, सिवाय गजा के, गजा के अलावा कोई ऐसी जगह बताएं जहां पे इस्लाम गालिब ना आया हो, गजा में बस नहीं आया है और वेस्ट बैंक के अंदर भी नहीं आया है, वहां पे मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से मारा जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको तो मैं नहीं कह सकता इस्लाम गालिब आ गया है, लेकिन डू अ लिटिल ट्रैवलिंग, आप थोड़ी सी ट्रैवलिंग करें दुनिया के अंदर और उन जगहों पे जाए जहां पर के मुसलमान होना जो था ना वो एक बहुत मुश्किल चीज समझी जाती थी, दाढ़ी रख करके वहां पे जाना, मुसलमान लिबास में वहां पे जाना, है ना, स्कार्फ के साथ वहां पे जाना, मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जाना बहुत मुश्किल चीज समझी जाती थी ना, अब नहीं समझी जाती, नहीं समझी जाती है ये चीज, ठीक है ना। हाँ एक्सेप्शंस तो होती ही हैं, किसी पागल का दिमाग खराब हो जाता है वो किसी स्कार्फ वाली को मार देता है, या किसी सरफिरे का जो है वो जाकर के किसी बच्चों को मार देता है, लेकिन दैट्स वन इन अ मिलियन, वन इन अ मिलियन, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो। तो भाई वो तो एक्सेप्शंस होते हैं, रूल किया है, इस्लाम इज नाउ एक्सेप्टेड, इस्लाम इज नाउ ए पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस्लाम पार्ट बन चुका है, इट्स नॉट जुडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन एनी मोर। समझ में आ रही है बात, जो लोग वहां रहते हैं वो बताएं ऐसा है कि नहीं है, राइट। तो क्या ये गुनाहों के साथ हमने जो ये अचीवमेंट हासिल कर ली है, तो डज दैट मीन ये फलाह है क्या, कि ये फलाह मिल चुकी है मुसलमानों को, जबकि कुरान मजीद कहता है इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, ज़ालिम फलाह नहीं पा सकते। तो हमारा मसला क्या है कि हम तो अपने आप को समझते ही नहीं है ना, हम एक्नॉलेज तो करें कि हमने जुल्म किया है, हम गुनाह कर रहे हैं, हम जालिम हैं, हम तो सिर्फ यहूदी को जालिम समझते हैं, ईसाई को जालिम समझते हैं, हिंदू को जालिम समझते हैं, या ये कि सास सास को जालिम समझते हैं, बहू सास को जालिम समझती है और सास बहू को जालिम समझती है, और दामाद जो है वो ससुर को जालिम समझता है, और बेटा जो है वो बाप को जालिम समझता है, और एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को जालिम समझता है, अवामुन्नास जो है वो हुकूमत को जालिम समझती है। अपने आप को तो कोई जालिम नहीं समझ रहा ना, जब अपने आप को जालिम समझ ही नहीं रहे तो फिर मजलूम समझ रहे हैं, जब अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं तो फिर तो कामयाब अपने आप को समझेंगे ना, कि भाई मैं तो जालिमों में से हूं ही नहीं, तो मैं क्यों ना कामयाब हुआ, राइट। और अपना गुनाह, अपना झूठ, अपना फरेब, अपनी गीबत, अपना यानी हर चीज का इस्तेमाल बुरा, उसकी तरफ हमारी नजर नहीं जा रही, क्योंकि हमारे सामने कोई आईना है ही नहीं, हमारी जिंदगी में कोई आईना ही नहीं है जो कि हमें बताए कि अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो तुम ये, राइट। अल्लाह के बंदे तुम क्या कर रहे हो ये, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना ये उसूल जो है वो बस यूसुफ अलैहि सलाम के किस्से के अंदर तो मौजूद है, हमारी जिंदगी से इसका वास्ता जो है ना वो खत्म हो चुका है, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली नाउ नाउज बिल्ला, इट्स इररिलेवेंट फॉर अस, इट्स इररिलेवेंट फॉर अस नाउ, ठीक है। क्या कहा आपने, 1 मिनट, इज इट राइट टू से दैट तौबा इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर अल्लाहस हेल्प और इट्स ए नेसेसरी कंडीशन? तौबा इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर अल्लाहस हेल्प और इट्स ए नेसेसरी कंडीशन? सफिशिएंट और नेसेसरी को आप अलग अलग भी सफिशियंट भी कह सकते हैं, नेसेसरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि तौबा के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और सफिशियंट क्यों है? इसलिए कि वंस यू डू तौबा, वंस यू डू तौबा देन यू 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 हैव ऑलरेडी डन अ यू टर्न, आप यू टर्न, तौबा इज यू टर्न, वो वाला नहीं जो हमारे हमारे मुल्क में जो यू टर्न होता है ना, उस वाले यू टर्न की बात नहीं कर रहा। तौबा जो है ना ये यू टर्न है, आप शैतान की तरफ भाग रहे हैं, जहन्नुम की तरफ भाग रहे हैं, और आपने जो है वो तौबा कर ली, यानी आपने यू टर्न करके अल्लाह की तरफ अपना रुख कर लिया। अगर आपने पक्की सच्ची वाली तौबा कर ली है ना, यानी वाकई में आपने यू टर्न कर लिया है, देन इट्स सफिशिएंट, बिकॉज जब अल्लाह की तरफ रुख हो गया, अब ये आप टिक को थोड़ी सकते हैं एक जगह पर, यू आर फेसिंग अल्लाह नाउ, क्या ख्याल है। अब अल्लाह ताला के पास कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता, अल्लाह ताला के अंदर कोई कशिश नहीं है कि जिसने अल्लाह की तरफ अपना रुख तो फेर लिया, दुनिया की तरफ अपनी पीठ कर दी, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको उधर ही खड़े छोड़ देना है, नहीं, अल्लाह ताला ने तो उसको अपनी तरफ खींचना है। तो यस तौबा इज सफिशिएंट, ठीक है ना, लेकिन हम तौबा करते नहीं है ना, हम यू टर्न करते नहीं है, तो इस वजह से हमारा सफर अभी भी दुनिया ही की तरफ चल रहा है, बस हमने ऊपर ऊपर से जो है ना वो अपना लिबास चेंज कर लिया है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, दुनिया की तरफ, यानी जहन्नुम की तरफ, शैतान की तरफ, ऊपर से दाढ़ी भी उगा ली, उधर से जुब्बा भी पहन लिया, इधर से जो है वो बुरका भी पहन लिया, इधर से जो है फलानी चीज भी चढ़ा ली, इधर से कुछ अमाल भी करने शुरू कर दिए, लेकिन रुख उधर ही है अभी भी, यू टर्न नहीं किया अभी तक हमने। ठीक है, यू टर्न करके तो देखें, फिर उसके बाद अल्लाह का काम देखें उसके बाद अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। फिर आपके बस में नहीं होगा दूर रहना, उसके बाद अल्लाह से दूर रहना बस में नहीं है इंसान के। ठीक है, तो ये उसूल जो है ना, ये देखें, ये उसूल भी ऐसा है कि देयर इज नो वे अराउंड इट, ये हो ही नहीं सकता कि हम समझ रहे हैं कि जो हम समझ रहे हैं ना, ये हो ही नहीं सकता कि हमें जो है ना वो दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी काफिरों के खिलाफ और हमें आखिरत में कामयाबी मिल जाएगी फरिश्तों के खिलाफ, हालांकि हमारा कोई मूड नहीं है गुनाहों को छोड़ने का, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना, अब आप YouTube के वीडियोस की बुनियाद पर समझने शुरू हो जाएं कि जी अब काफिर मारे गए सारे के सारे, अब तो नहीं बचेंगे ये, है ना। आप यानी ये यानी हद होती है। किसी ने इसी तरह की एक बात के ऊपर ना, किसी ने इस फकीर को जवाब दिया कि एनीथिंग दैट यानी व्हाट व्हाट इट मींस इज कि इफ इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट्स नॉट, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, यानी ये जो है ना कि ये काफिर मर रहे हैं और शिकस्त हो रही है उनको और हम जो है वो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, इट्स टू गुड टू बी ट्रू ना। तो आजकल आज के दौर के अंदर उसूल क्या है कि इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट्स प्रॉब्ली नॉट, ये उन साहब ने लिखा। ठीक है, यानी वो ट्रू नहीं है, वो तो सोशल मीडिया का धोखा है, वो तो वीडियो गेम्स की फुटेजेस हैं और जो है वो हॉलीवुड की फिल्म की और ना जाने क्या क्या किस्म की, उल्लू को उल्लू बनाने के लिए मजीद। ठीक है, तो इस आजिज के दिल में जवाब आया, मैंने उनको लिखा नहीं लेकिन मेरे दिल में जवाब आया कि हाउ हाउ मोर स्टूपिड कैन वी बी, हाउ मच मोर स्टूपिड कैन वी बी, कि हम इन चीजों के ऊपर जो है ना वो ऐसे फरेफ्ता होते हैं, ऐसे फरेफ्ता होते हैं कि यानी हमें देर नहीं लगती फरेफ्ता होने में। यानी कोई उल्लू बनाने के लिए हमारे पास आता है ना, तो हमें उल्लू बनने में देर नहीं लगती, क्यों, इसलिए कि हम पहले से उल्लू बने हुए हैं, असल में पहले से हम उल्लू बने हुए हैं, तो जाहिर है कोई आकर के आपको मजीद उल्लू बनाएगा तो आप क्या थोड़ा सा ज्यादा उल्लू बन जाएंगे, और क्या होगा ज्यादा सा, तो छोटे उल्लू को बड़ा उल्लू बनने में कोई ज्यादा टाइम तो थोड़ी लगता। ठीक है, तो क्या उल्लू बन रहे हैं हम यही उल्लू बन रहे हैं कि हमने समझा हुआ है कि हम गुनाहों को छोड़े बगैर जो है ना वो काफिरों को शिकस्त दे देंगे, हम काफिरों को शिकस्त दे देंगे और जो है ना वो फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, गुनाह नहीं छोड़ने, तौबा नहीं करनी। ठीक है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू विदाउट द सफिशियंट विदाउट द नेसेसरी एंड द यू नो एसेंशियल कंडीशन, एवरीथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट्स कैन नॉट बी ट्रू। तो असल जवाब इसका ये है कि हाउ मच मोर स्टूपिड कैन यू बी, कितना मजीद आप जो है वो उल्लू हो सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब धोखे की भी कोई हद होती है, इंतहा होती है धोखा खाने की, है ना, नाइव होने की, नाइव होना समझते ना, नाइव होना, भोला होना, भोला तो भोले होने की भी कोई हद होती है यार, बस करो भाई, कुछ अकल के नाखून दो, कुछ तौबा करो अल्लाह ताला के सामने, कुछ गिड़गिड़ाओ, ऐ अल्लाह मेरी अकल के ऊपर जो पट्टी बंध चुकी है कि मैं हरेक के हाथों जो है वो बेवकूफ बना चला जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह इस पट्टी को खोल दीजिए, ऐ अल्लाह माफ कर दीजिए मुझे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, हमारी अकलों के ऊपर से पट्टी को उतार दीजिए, इसी पट्टी के साथ जो है वो कब्र के अंदर चले गए, तौबा भी नहीं नसीब होगी फिर तुम, तौबा भी नहीं नसीब होगी फिर तुम। मारूफ मसाइल, टाइम तो खत्म हो गया, नहीं 2 मिनट हैं, 2 मिनट भी बहुत होते हैं इंशाल्लाह। मारूफ मसाइल में फरमाते हैं कि पिछली आयतों में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की इब्तदाई सरगजश्त बयान हो चुकी है कि काफिले वालों ने जब उनको कुएं से निकाल लिया तो बरादरान यूसुफ ने उनको अपना गुलाम गुरीख्ता गुरीख्ता बताकर थोड़े से दिरहमों में उनका सौदा कर लिया। गुरीख्ता का जो लफ्ज है मुझे भी नहीं पता था लेकिन सर्च करने पर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, भागा हुआ गुलाम, ठीक है, फारसी का लफ्ज है जाहिर है, तो तो भागा हुआ गुलाम बताकर थोड़े से दिरहमों में उनका सौदा कर लिया। अव्वल तो इसलिए कि उनको इस बुजुर्ग हस्ती की कदर मालूम ना थी, दूसरे इसलिए कि उनका असल मकसद उनसे पैसा कमाना नहीं था बल्कि बाप से दूर कर देना था। इसलिए सिर्फ फरोख्त कर देने पर बस नहीं की, क्योंकि ये खतरा था कि कहीं काफले वाले उनको यहीं ना छोड़ जाए, ठीक है ना, और फिर ये किसी तरह वालिद के पास पहुंचकर हमारी साजिश का राज फाश कर दे। इसलिए इमाम तफसीर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक ये लोग इस इंतजार में रहे कि ये काफला उनको लेकर मिस्र के लिए रवाना हो जाए, और जब काफला रवाना हुआ तो कुछ दूर तक काफले के साथ चले और उन लोगों से कहा कि देखो उसको भाग जाने की आदत है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कह रहे हैं उनके भाई कि इसको तो भाग जाने की आदत है, खुला मत छोड़ना है इसको बल्कि बांध कर रखो। उस दुर्रे शहवार की कदर कीमत से नावाकिफ काफले वाले उनको इसी तरह मिस्र तक ले गए, यानी बांध करके, है ना। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हो रहा है। कौन है यूसुफ अलैहिस्सलाम? अल्लाह के नबी हैं और इतने हसीन हैं कि आधी आधी दुनिया का हुसन जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है ना। तो जब ट्रांजिशनरी पीरियड्स होते हैं ना, तो इसके अंदर ना ना नेकियां इंसान की जो है ना वो उसको दुनिया की आजमाइशों से बचा बचा सकती हैं, ना उसका मर्तबा मकाम उसको दुनिया के आजमाइशों से बचा सकता है, और ना जो है ना वो उसका जाहिरी हुसन और जाहिरी कमाल उसको दुनिया की आजमाइशों से बचा सकता है। बस अल्लाह क्या कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान जिसके ऊपर हो गया अल्लाह ताला उसको आफियत अता फरमा देते हैं, वरना उम्मीद तौर पर ऐसा नहीं होता। आयात मस्कूरा में इसके बाद का किस्सा इस तरह मस्कूर है और कुरानी एजाज के साथ किस्से के जितने अज्जा खुद ब खुद समझ में आ सकते हैं उनको बयान करने की जरूरत नहीं समझी। मसलन काफिले का मुख्तलिफ मंजिलों से गुजर कर मिस्र तक पहुंचना और वहां जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त करना वगैरह सब कुछ छोड़कर यहाँ से बयान होता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जो है वो इजमाली किताब है, 30 पारों के अंदर अल्लाह ताला ने अपने कलाम को समेट दिया है उसके अंदर, तो हर चीज की बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स अल्लाह ताला ने बयान नहीं फरमाई है। तो यहाँ तक हम आज की क्लास रोकते हैं। अगर किसी को सवाल है, कमेंट है, तो वो आप पूछ लीजिए, बाकी इंशाल्लाह क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कैन एनी वन नो दैट दे आर गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशनरी पीरियड? कैन एनी वन नो दैट दे आर गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशनरी पीरियड? यस, इट इज पॉसिबल टू नो, लेकिन यू कैन बी मिस्टेकन, है ना। आप अपने इस जजमेंट में अपने बारे में आप जो है वो मिस्टेकन भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सही जजमेंट भी हो सकती है। तो बेहतर यही होता है इसके अंदर कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डिटर्मिनिस्टिक डिसीशन कि मैं इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर हूँ, इससे बेहतर यह है कि आप किसी आईने से जो है ना, जो आपकी जिंदगी का आईना हो, और मोमिनो मिरातुल मोमिन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मोमिन मोमिन का आईना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी फिजिकल आईने की बात नहीं हो रही, बल्कि कोई ऐसा मोमिन होना चाहिए जो कि आपकी जिंदगी के अहवाल से वाकिफ हो और जो कि अल्लाह ताला के दीन से वाकिफ हो, अकल समझ इल्म और हिकमत वाला इंसान हो, उससे जो है वो अपने हालात को पूछ लेना चाहिए। वो अगर आपको कह दे कि हाँ इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड के अंदर हैं और ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह जो है वो आप इससे गुजर जाएंगे, तो उनकी दी हुई तसल्ली जो है ना उसके ऊपर आप इत्मीनान कर सकते हैं। बाकी अपने बारे में तो फैसला कोई क्या भी कर सकता है, कोई मायूसी का शिकार हो तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो बस बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, तो वो मायूसी का शिकार हो जाएगा। और कोई जो है वो खुशफहमी का शिकार हो तो कहेगा जी मैं तो ट्रांजिशन पीरियड में हूँ, अब तो मुझे आगे से जो है ना वो नेमतें मिलने वाली हैं और सब कुछ होने वाला है, तो पता चला कि वो ट्रांजिशन पीरियड में नहीं था, वो तो कहीं और ही जा रहा था, असल में जहन्नुम के ट्रांजिशन में था वो असल में, तो वो खुशफहमी में मुबतला हो गया, तो फिर उसने जहन्नुम की तरफ जो जाने वाला उसका जहाँ से उसने यू टर्न करना था वो यू टर्न भी नहीं किया, और पता चला उनकी जो ट्रांजिट है ना वो कहाँ पे जाकर के लैंड किया उन्होंने, जहन्नुम के अंदर, ठीक है। तो भाई शैतान है ना जिंदगियों के अंदर, तो शैतान इस तरीके से किसी को मायूसी में मुबतला करके जहन्नुम पहुंचाता है, किसी को खुशफहमी में मुबतला करके जहन्नुम में पहुंचाता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने अंबिया का सिस्टम बनाया, ठीक है, कि भाई अंबिया जो है ना वो उनसे सीखो, उनको आईने के तौर पर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो, तब तुम शैतान के धोखों से महफूज रह सकोगे और तुम्हारा ट्रांजिशन जो है ना वो जहन्नुम वाला ट्रांजिशन नहीं बनेगा, वो जन्नत वाला ट्रांजिशन बन जाएगा, ठीक है। तो अम्बिया के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जो अम्बिया के वरसा है वो दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उनमें से किसी को अपना आईना बना लेना चाहिए, ठीक है। तो आपके सवाल का यही जवाब है इंशाल्लाह, यही जवाब। अच्छा, और कोई सवाल वगैरह? है, चलें फिर टाइम तो बोर हो गया, तो फिर हम खत्म करते हैं। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।